बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है इस्लाम और फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा कुछ अकली मुकदमात पे खड़ा होता है और एक इंसान या इंसानों का एक ग्रोह मुख्तलिफ ज़मानों में अपने अपने लॉजिकल या अकली इस्तदलाल से कुछ हकायक दरियाफ्त करने की कोशिश करता है। इन सारी अफकार को जो इंसान अपने घर में बैठ के ख्वा वो साइंस की मदद से कर रहा हो, ख्वा वो अपने ख्यालात की मदद से कर रहा हो, या वो अपनी लॉजिक से कर रहा हो, कुछ नतायज अखज़ करता है। उन नतायज को हम जो मज़हबी या अखलाकी पहलू को डील करने वाले होते हैं उनको हम फ़लसफ़ा कह देते हैं। एक आदमी घर में बैठा ये सोच रहा होता है कि अखलाकियात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वो एक पूरा मुकदमा बनाएगा, उसके नतायज निकालेगा और फिर एक राय देगा कि यूँ होना चाहिए। फ़लसफियों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो हिस्ट्री में पैदा हुए, हर तहजीब में पैदा हुए और हर इलाके में उनके असरात भी मौजूद हैं और उनकी लिखी हुई चीज़ें भी मौजूद हैं। इसके मुकाबले में इस्लाम एक अलग से एक सोच रखता हुआ शुरू से हज़रत आदम के ज़माने से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक आता है और वो एक अलग पूरा फ़लसफ़ा देता है। यानी कहने को इस्लाम की तालीमात भी हम अगर कैटेगरी में रखेंगे तो फ़लसफे ही की कैटेगरी में आएंगी, लेकिन चूँकि वो मज़हब है, इस्लाम है, इसलिए लोग उसको थोड़ा अलग कर देते हैं। तो फ़लसफ़ा जिन नज़रियात पे खड़ा होता है वो नज़रियात अगर मज़हब से और अखलाक से मेल खाते हों तो हम उनको फ़लसफ़ा कह देते हैं। और इस्लाम भी इसी तरह की तालीमात को फ़रोग देना चाहता है, बयान करता है। अब सवाल ये है कि क्या हम फ़लसफ़े को माने कि इस्लाम को माने, क्योंकि बाज़ औक़ात एक फ़िलासफ़र की बात बड़ी लॉजिकल होती है, बड़ी समझ आ रही होती है और दिल चाहता है कि हाँ ये बात ठीक है, इसकी इसको मान लेना चाहिए। उसके मुकाबले में इस्लाम की बात ऐसे लग रहा होता है कि ये सादा सी मजहबी सी बात है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको क्यों ना छोड़ दें हम। ये टकराव पिछली कई सदियों से हमारे सामने है, तो मैं ये आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसमें असल असूल क्या है, किस बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि फ़िलासफ़र्स की बात माने या खुदा की बात माने। देखिए, एक बात असूली तौर पर मैं पहले भी किसी नशिस्त में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हक बात का मतलब ये है कि वो इल्म के मियार पे हर पहलू से पूरी उतरती हो, और हक बात से जो दूसरी बात उलट होती है वो नाहक बात होती है। नाहक बात वो होती है कि जिसके बारे में ये है कि वो इल्म के मियार पे पूरी ना उतरती हो और पूरी बात को समेट ना रही हो, उसमें कोई झोल रह गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन की ख़राबी रह गई हो, तो वो बात दुरुस्त नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ कहूँ कि घोड़ा तीन टांगों वाला जानवर है, मैं लॉजिक से साबित कर दूँ, लेकिन आप कहें कि ये आदमी बेवकूफ़ है, इतना भी नहीं जानता कि घोड़े की चार टांगें होती हैं। तो क्या हुआ कि मालूमात की एक ख़राबी की वजह से मैं घोड़े को तीन टांगों वाला जानवर समझता रहा। ये जो ख़राबी है कि घोड़ा तीन टांगों वाला है या चार वाला है, ये इन्फॉर्मेशन की गलती से हो सकता है कि मैं लॉजिक में साबित कर दूं कि वो खड़ा भी हो सकता है, वो चल भी सकता है, वो काम भी कर सकता है, उसको कोई ख़राबी पैदा नहीं होती, तीन टांगें हो सकती हैं। तो सबूत के एतबार से, लॉजिक के एतबार से बाज़ औक़ात हम बड़ी खूबसूरत बात बना लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त आइडिया दे देते हैं, लेकिन अपनी हकायक के एतबार से वो बात गलती का शिकार होती है, क्योंकि वो घोड़े को एक्सप्लेन ही नहीं कर रही होती जो बाहर हकीकत में मौजूद है। तो हकीकत का पूरा इल्म हर फलसफी के पास नहीं होता। मसलन वो इस दुनिया का जायज़ा लेगा और कहेगा कि बस मौत है और ज़िंदगी है और बस ख़त्म है, ऐसे ही चल रही है सदियों से, इसका कोई अंजाम नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, बस आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त हो सकती है, बड़ी खूबसूरत हो सकती है, अगर ये हकीकत के मुताबिक हो। तो असल असूल ये है इस सारी गुफ्तगू में कि हमने हकीकत के मुताबिक रहना है, रियलिस्टिक अप्रोच इख्तियार करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये कहा जाए कि जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो ये गिरने वाला है, इसकी छत जवाब दे चुकी है, चंद लम्हे की बात है, किसी वक्त गिर सकती है, और मैं कहूँ कि तुम क्या बातें करते हो, मैं बैठा हूँ, मेरी लॉजिक के मुताबिक बड़ी हमवार है, दीवारें मजबूती से खड़ी हैं, बस मैं बैठा हुआ, कोई मसला नहीं, तुम जाओ, मैंने पूरी लॉजिक से इस हकीकत को साबित कर लिया अपने लिए कि कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर वाकई छत गिरने वाली है तो میں نیچے آ کے مر جاؤں گا. تو لاجک کے اعتبار سے ہم پوری ایک بات بنا لی, فلسفہ بنا لیا, لیکن وہ حقیقت پر نہیں کھڑا تھا. تو لاجیکل ہونے کے باوجود, بڑی خوبصورت بات ہونے کے باوجود, چونکہ وہ حقیقت پر نہیں کھڑا تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہو جائے. تو فلسفہ بہت عمدہ چیز ہے, عقل کی ٹریننگ کرتا ہے, باتوں کو سوچنے, سمجھنے, انالیسز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے, اور ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو خدا سمجھانا چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ایک مصیبت ہے کہ یہ بعض اوقات ایسی گورکھ دندے میں ہمیں ڈال دے گا, ایسی خوبصورت تصویر بنائے گا, ایسا خوبصورت استدلال بنائے گا کہ ہم اس میں پھنس جائیں گے, حقیقت فراموش ہو جائے گی. چنانچہ فلسفیوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو اسی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں, اسی دنیا کے اندر سے ایک مسلک نکالنا چاہتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ دو چار بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اتفاق کر سکیں کہ ہاں یہ حقیقت تو ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اینگل سے پوری کائنات کو دیکھا, تجزیہ کر کے ٹک ٹک دو چار باتیں کہہ دیں اور فلسفہ بنا دیا, کیا حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. تو ریئلسٹک اپروچ میں اور فلسفیانہ اپروچ میں فرق یہی ہے کہ ریئلسٹک اپروچ اس بات کو ماننا چاہتی ہے کہ حقیقت ہے کیا, اور فلسفہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لاجک سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے ریئلسٹک اپروچ کی طرف. یہ کائنات اپنے وجود سے بتا رہی ہے کہ یہ کریئٹڈ ہے, ہمیں یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ اس کا کریئٹر ہے. یہ کائنات اپنے وجود سے بتا رہی ہے کہ اس میں خیر و شر کا عمل جاری ہے. تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. یہ حقیقت ہے اس دنیا کی کہ یہاں موت کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے. کوئی شخص آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کو موت نہ آئی ہو. اس موت کا کیا حل ہے؟ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. تو یہ بڑے حقائق ہیں جن کو مانے بغیر اگر فلسفہ کھڑا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو فلسفے میں اور اسلام میں یہی فرق ہے کہ اسلام ریئلسٹک اپروچ پہ کھڑا ہے اور فلسفہ لاجیکل الوژنز پہ کھڑا ہے. امید ہے میری بات واضح ہو گئی ہوگی. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.